نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور انسان سے بڑھ کر پھر یہ ہے کہ مسلمان بنایا پھر مسلمان بڑھ کر بھی اور نعمت ہمارے اوپر یعنی نعمتوں پہ بڑی نعمتیں ہمارے اوپر اور وہ کیا ہے کہ اس نے ہمیں باشعور بنایا آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو یہ تک نہیں پتا کہ ہم دنیا میں آئے کیوں ہم نے یہاں سے آ کے کر کے کیا جانا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی انسان کو اگر اپنے بارے میں شعور دے دے ہم جب تک اپنے آپ کو نہیں جانتے اس وقت تک ہم اللہ تعالیٰ کی بھی صحیح معرفت نہیں کر سکتے یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے آپ کسی بھی چیز کو اگر دیکھتے ہیں کوئی بھی کمپنی ہے تو اس کو اس کے پروڈکٹ سے دیکھا جاتا ہے نا بس اگر الیکٹرانکس میں دیکھیں تو بڑے معروف نام ہے نیشنل کمپنی اور برون اور اس طرح سے تو آپ کسی بھی کمپنی کی کوئی مشین جب خرید کے لاتے ہیں اپنے گھر میں تو آپ اس کے پروڈکٹ کو دیکھتے ہیں نا نام سے تو کسی کو کچھ نہیں لگے نام پہ بہت اچھا لکھا ہو گرائنڈر ہے بلینڈر ہے لیکن جب آپ اس کو یوز کرنا چاہیں تو وہ اپنا کام نہ کرے تو کیا ہوگا پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ نے غلط چیز استعمال کی ہے بالکل یہ کہہ لیجئے کہ انسان دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ماسٹر پیس ہے دنیا میں ہر چیز سورج چاند ستاروں پھولوں بھنوروں جس کو بھی آپ بیوٹی کا یا خوبصورتی کا یا افیکشن کا سمبل سمجھتے ہیں انسان ان سب سے زیادہ خوبصورت چیز ہے لفظ احسن کو دیکھیں تو یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے نا خوبصورتی کے لیے حسن حسین حسینہ احسن یعنی سب سے پیاری چیز عموماً فلموں میں ڈراموں میں پوئٹری میں نسبت دی جاتی ہے ایسی چیزوں کو کہ جس سے لگتا ہے کہ یہ انسان جو ہے وہ کہ خوبصورتی میں دیکھے تو پھول بڑا خوبصورت ہے اور یہ اور وہ لیکن حقیقت میں انسان کائنات کی سب سے خوبصورت چیز ہے کیونکہ آپ دیکھیے کہ کوئی بھی چیز اگر پرندے ہیں وہ خوبصورت کیوں لگتے ہیں کیونکہ وہ اڑتے ہیں اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ مور خوبصورت ہے لیکن اس کی زندگی میں وہ مقصد اور وہ خوبصورتی نہیں ہے تو گویا کہ کہہ لیجئے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور انسان کی کوئی بڑی خاص بات تھی کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا اور انبیاء کرام کا ایک سلسلہ تھا تین دفعہ قرآن پاک میں کم و بیش یہ بات ہے جس میں سے ایک جگہ سورۃ جمعہ کی ہے 62 سورت ہے اور آیت نمبر 2 ہے کہ ہو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم و یعلمہم الکتاب و الحکمہ وہی اللہ جس نے ان پڑھ لوگوں کے اندر ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے تھا اور جو اس کی آیتیں اس پر تلاوت کرتا اور ان کا تزکیہ کرتا تھا اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا تو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑے ہی ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہر دور پہ اس نے مختلف لوگوں کو بھیجا آج تو وہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے نا لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور دنیا میں آپ کے آنے سے پہلے تک یعنی بعض روایتوں کے مطابق 100,000 سے بھی زائد پیغمبر بھیجے تو جو پیغمبروں کا بہت بڑا کام کیا تھا کہ وہ کیا تھا کہ ہیومن پرسنالٹی کو ڈسکور کرے سائیکالوجسٹوں کو ہم سے بڑا انٹرسٹ ہے کیونکہ آج کے دور میں اکثر لوگ ان کے پاس آتے جاتے اور اٹھتے بیٹھتے ہیں اور بہت سارے لوگ جب ڈپریس ہوتے ہیں سٹریس میں چلے جاتے ہیں انگزائٹی کے پیشنٹ بنتے ہیں تو وہ پھر کسی سائیکاٹرسٹ کی طرف ریکمینڈیڈ ہوتے ہیں لیکن آج بھی آپ دیکھیے کہ جب بھی آپ سائیکالوجی کے قریب جائیں گے نا تو اس کا سب سے فیوریٹ ٹاپک کیا ہے ہیومن پرسنالٹی کو ڈسکس کرنا جیسے آپ کا دل کچن میں لگتا ہے مردوں کا دل بزنس میں لگتا ہے تو سائیکالوجسٹ جو ہوتے ہیں وہ انسان کی پرسنالٹی کے ارد گرد گھومتے ہیں ہم آج اس کو ایک بہت اچھی ٹرم دے دیتے ہیں پڑھے لکھے ہونا یعنی اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ سائیکاٹرسٹ بننا چاہتی ہیں آپ کہیں گے بہت ٹائم چاہیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی پڑھنا پڑتا ہے حالانکہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ چند گھنٹے کے سیشنز لے لیجئے تو اس کے بعد آپ کم از کم ایک اس درجے کی سائیکاٹرسٹ بن چکی ہوں گی کہ آپ اپنی پرسنالٹی کو کھول لیں گی اور اپنی پرسنالٹی کے اندر جو آپ کی چیزیں چھپی ہوئی ہیں یا اچھی چیزیں ان کو ڈسکور کریں گے فائدہ لیں گے اور اگر کوئی کمی بیشی ہے تو اس کو دور کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ نقصان کا سودا نہیں ہے हमें सबसे ज़्यादा दिलचस्पी अपने आप से होती है, हमारा जिक्र कहीं होता है हमें बड़ा अच्छा लगता है, कोई हमारी तारीफ़ करे हमें बहुत अच्छा लगता है, कोई हमें बुरा कहे तो हमें बहुत बुरा भी लगता है, बिकॉज़ हर वक्त हम अपने बारे में बहुत सेंसिटिव होते हैं। इवन लोग हमारे माँ बाप को बुरा कह दें, हमें बुरा तो लगता है लेकिन इतना नहीं, इट्स ओके, हाँ हाँ मामा ऐसी हैं, बल्कि बाज़ माएँ तो बच्चे खुश होंगे कोई और तो आया जो माँ को बुरा कहे हमारी, इसी तरह हम दूसरों को कहते हैं, लेकिन हम अपने आप से बहुत प्यार करते हैं। तो इंसान जो है ना, ये अल्लाह सुबहाना तआला का एक मास्टर पीस है। अगर आप देखें तो इंसान क्या है, आज जैसे मैं आपको डिफरेंट एस्पेक्ट्स देना चाह रही हूँ जितने भी आप ले सके, कि इंसान असल में बहुत सारी खूबियों का मजमूआ है। जैसे आप बिरयानी बनाते हैं या हलीम है, तो आप सबको ही पता है कि उसमें क्या क्या डलता है, आप कोई उसमें ज़्यादा डालते हैं वही चीज़ या कम करते हैं तो टेस्ट बदल जाएगा ना, लेकिन बेसिक चीज़ तो वही होती है। इसी तरह हर इंसान बेसिकली एक ही है, किसी के अंदर कुछ इतनी खूबियाँ आ जाती हैं कि वो दुनिया में अम्बिया कराम की तरह मशहूर हो जाते हैं, लोगों को फ़ायदा देते हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान पाक में आता है, कान उम्मतन, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक उम्मत थे, एक नेशन थे, यानी उन अकेले इब्राहिम ने वो काम कर लिया जो एक पूरी उम्मत और एक पूरी नेशन मिलके भी नहीं कर पाती। तो क्या पता चला कि क्या मैं आप सिर्फ इस दुनिया में से अपने दुखों और अपने गमों के साथ चले जाएंगे? क्या हम कोई बड़ा काम नहीं करना चाहते? करना चाहते हैं ना, हम सबका दिल करता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आए, तो आप कहेंगे अच्छा, हम कैसे कोई अच्छा काम कर सकते हैं? मैं आपसे कहूँ कि आप इस सिटी में रहते हैं, इस कंट्री में, कैन यू बेनिफिट द होल सिटी, आप कहीं कैसे दूँ, मैं कोई सियासत में हूँ, मैं कैसे, मेरी तो रीच ही नहीं है। लेकिन आप देखिए कि हर बंदे की ख्वाहिश बहुत होती है कि वो दूसरों को फ़ायदा दे। तो खुद को समझ लेना, अपने अंदर के पोटेंशियल को डिस्कवर कर देना, असल में लोगों के लिए खुद को बेनिफिशियल बनाना होता है। जब किसी चीज़ की आपको रेसिपी समझ आ जाती है तो उसको कॉपी तो बंदा कर ही लेता है, हमारे माशाल्लाह कल्चर में तो बहुत आम है रेप्लिका, ज़रा सी चीज़ लेकर बाकी चीज़ें वो खुद ही जोड़ तोड़ लेते हैं ना। इंसान की रेसिपी क्या है, यानी दिस इज़ माई टॉपिक टुडे, व्हाट इज़ द रेसिपी ऑफ ह्यूमन बीइंग। आप देखते हैं कि इंसान के जिस्म के दो हिस्से हैं, एक वो जो आपका मेरा मुझे आपका दिख रहा है ना, हमारा फेस है, हैंड्स है, और हमें ये भी पता है मिट्टी से पैदा हुए, हम कुछ चीज़ें खाते हैं, हम सब की ऑलमोस्ट हेयर एंड देयर कर लें तो कुछ चॉइसेस मिलती है, हम सबको देसी खाने अच्छे लगते हैं, चाइना वालों को चाइनीज़ अच्छे लगते हैं। लेकिन एक और चीज़ होती है जो इंसान के अंदर छुपी होती है, वो हम एक माँ के पेट से भी पैदा होने वाले सब भाई बहनों की सेम नहीं होती। आपका एक्सपीरियंस होगा कि दो भाइयों में बहुत फ़र्क होता है, दो बेटियां एक ही माँ की, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। अगर आप 6 बहनें हैं तो 6 की 6 बिल्कुल डिफरेंट माइंडसेट की होंगी, तो दैट मीन्स समथिंग इज इनसाइड, कोई गड़बड़ है। यानी आप रोज़ एक ही तरह से एक ही चीज़ देखें, आप कहते हैं है ही ये चीज़, बट नहीं। आप एक चाय का कप लें, 10 लोगों को कहें जाए चाय बना के लाए, कुछ की चाय पी के आप शुक्र करेंगे और कुछ की पीकर सब्र। तो अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत ही ब्यूटीफुल रेशियो एंड प्रोपोर्शन से पैदा किया है। चाय में ज़रा सी पत्ती ज़्यादा पड़ जाए तो कड़वी हो जाएगी, ना पड़े तो वो फीकी रहेगी। इंसानों को अल्लाह ने ओवरऑल एक बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन दिया है, और इंसान की लफ्ज़ की जगह आप अपने ऊपर से लें। आपके बारे में आपकी दोस्तें क्या कहती हैं, सोचें ज़रा। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ पर्सनैलिटी, व्हाट इज़ शख्सियत, उर्दू में इसको शख्सियत कहते हैं, लेकिन आजकल अफसोस है कि हम उर्दू से ज़्यादा इंग्लिश में कंफर्टेबल फील करते हैं। मैं अपना ये जुमला भी आधा इंग्लिश में ही बोल रही हूँ ताकि मेरा ये जुमला भी सबको समझ आ जाए। तो पर्सनैलिटी या शख्सियत की कोई एक डेफिनेशन नहीं दे सकते। आप ये कह सकते हैं कि किसी इंसान की शख्सियत इसकी ज़ाहरी और बातनी, और इसकी कुछ ऐसी चीज़ें जो इसको अल्लाह ने दी जिसको आप गॉड गिफ्टेड कहेंगे, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके लिए उसको मेहनत करनी पड़ती है। आपसे कोई पूछे आपकी फ़लां दोस्त कैसी, यानी मिसाल लीजिए आपकी कोई दोस्त है शम्मा, आपकी कुछ दोस्त होंगी बानो, आपकी कोई दोस्त होंगी सलमा, आप कुछ भी नाम लीजिए, आप बैठी हैं और कोई कहता है वो सलमा कैसी हैं, बिलफर्ज लेट्स सी, कोई उनके घर में अपने बच्चे का रिश्ता करना चाह रहा है, वट एवर कोई भी बात है ना, आप कहते हैं ख्वाहिशी। अब आपसे जब कोई ये पूछता है कि आपकी दोस्त कैसी हैं, तो फ़ौरन आपके जहन में क्या जाएगा, मसलन सलमा वक्त की बहुत पाबंद है, शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। अब सारी सलमाओं से माजरत के साथ अगर मैं कोई बुरी बात कह दूँ, लेकिन अच्छी बातें देखते ना, हम कहते हैं वो बहुत मुखलिस है। कभी कभी बुराई भी हो तो आप कहते हैं ना ना उसमें एक मसला है ना। ये जो हम डिस्कस करते हैं ना, फलां वक्त का पाबंद है, फलां तो हमेशा वक्त पे आता है, फलां तो ये, फलां तो ये, दैट इज़ द पर्सनैलिटी। कुछ लोग हैं वो कह दे तो पत्थर पे लकीर हो जाती है, आप कहते हैं पत्थर ने हिल जाना है, इसने नहीं हिलना अपनी जगह से, और कुछ कह भी दें कहते रहने दो, ये एक हल्का सा हवा का गोला है, फूंक मारेंगे तो उड़ जाएगा। तो गोया के फिर हमारी पर्सनैलिटी के अंदर कुछ स्ट्रांग चीज़ें होती हैं और कुछ के ऊपर हमें स्ट्रांग करना पड़ता है। और ये भी याद रखिए कि हमारी जो पर्सनैलिटी होती है ना, ये वो के सब बदलती भी है। बहुत सारे आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं हमारे सरकमस्टांसिस के। एक तो हम पर्सनली बचपन से लेके जवान बल्कि बूढ़े होने तक मुस्तकिल ग्रूम करते हैं। हमारा इल्म बढ़ता है वक्त के साथ, हमारा इंटेलेक्ट बढ़ता है, तजुर्बे के साथ हमें लोगों को परखना आ जाता है। आप जितना ज़्यादा लोगों में रहते हैं ना, आपको चेहरे पे सब लिखा मिल जाता है। लोग तो बाद में ज़ुबान खोलते हैं ना, उनका हाल बता रहा होता है कि इस वक्त इसके अंदर क्या हो रहा है। ये जो रवैये होते हैं, जो लोगों का करेक्टर खुलता है हमारे सामने, अगर हम पहले से जान चुके हों तो 80% हादसा हमारी ज़िंदगी में नहीं होंगे। फिर आगे एक और चीज़ पे चलिए कि दो तरह की खूबियां आप में और मेरे में। वी हैव यानी बंच ऑफ खूबसूरतियाँ भी हैं, नेगेटिविटी भी है, लेकिन दो तरह की है। एक है गॉड गिफ्टेड और एक वो है जो आपको खुद करनी है, यानी एक के लिए आपको मेहनत करनी है। एक ऐसी है जो आपके इख्तियार में नहीं। मसलन आप देखिए कि आप में से जिनके भी बच्चे हैं, सभी के होंगे कुछ, आपके माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे, आपको कभी उनका गम ना दिखाए और सो ऑन। आपके 5 बच्चे सेम हैं, आदत तबीयत मिजाज, ज़रा सब में बताइए। एक बर्तन में से निकले हैं, एक ही माँ एक ही बाप एक ही पेट, है ना। ये कहती है पांचों डिफरेंट है, दिस इज़ पर्सनैलिटी। तो फिर आपने एक ही दफ़ा कोई ज़्यादा मेहनत की थी? नहीं, माँ को तो पता भी नहीं होता। आपका पहला बेबी है ना, ये फर्स्ट है, देखिएगा सेकंड इतना डिफरेंट होगा कि आपने हर वक्त कहना वो पहला ऐसे था, अब छोटा पता नहीं किस पे गया। ये होगा, डेफिनेटली होगा। माशाल्लाह आप अपने घर में 12वें नंबर पे हैं। चले एक इनसे भी बात ले, यानी आप समेत कुल 12 बहन भाई हैं, ऐसे ही है ना। आप बताइए कि आप सब फ़र्क हैं, सेम है, सिमिलर हैं, कैसी हैं? सब फ़र्क है। कभी कोई माँ अपने बच्चे की बुराई करे तो मैं उसे कहती हूँ कि अच्छा पैदा कर लेती, आपका कसूर है, आपका कसूर है। बात समझे कि हम मजबूर हैं, दिस इज़ द पॉइंट। यानी वी हैव टू काइंड ऑफ डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स। एक वो हैं जो बराह रास्त अल्लाह की तरफ से मिली हैं, इसको आप नेचुरल कह सकते हैं, कुदरती कह सकते हैं, गैर इक्तसाबी। इक्तसाब होता है कमाना, कसब कमाना, अन, यानी वो चीज़ें जिसमें मेरा आपका दखल नहीं है, ठीक है। दूसरी वो होती हैं, दी तो वो भी अल्लाह नहीं है, लेकिन एक तो इंसान उसके अंदर कमी बेशी कर सकता है, चेंज कर सकता है, तब्दीलियाँ कर सकता है, और ये वो होती हैं जो बाज़ दफ़ा आपके माहौल का असर होता है। इसको इक्तसाबी भी कह सकते हैं, इसको एक क्वाइट भी कह सकते हैं। मसलन अमूमन मिसाल दे रही हूँ, जस्ट गाँव में जो लोग रहते हैं, जस्ट लाइक कह रही हूँ, वो ऊंचा बोलते हैं, हाश बोलते हैं, और वो जब आपस में बातें करते हैं तो बहुत बेतकल्लुफ़ होते हैं। वजह, आप किसी शहर के माहौल में बहुत पढ़े लिखे स्पेसिफिकेटेड फैमिली में जाएं तो वो कदम भी उठाएंगे आराम से, बच्चे को भी कहें ऐसा बोलते हैं। फ़र्क किस बात का? एजुकेशन और माहौल। वो जानवरों में रहते हैं, ढोर डंगर उनके पास हैं, वो उनके साथ। कुरान में ये लफ्ज़ मैंने इसलिए बोला है, आप 11वें पारे का शुरू खोलिए, अरबी कहते हैं इसको कुरान में, बदवी देहाती हम उसको कहेंगे, कोई इसको बढ़ जाएगा तो वो जंगली भी कह देगा। अल्लाह कहते हैं बहुत सारे अराबी जो होते हैं ना, ये अशद्दु सख्त होते हैं, शदीद होते हैं। तो दैट में इंसान का माहौल कैसा है। फिर इसमें आप देखिए कि हमारा रंग, हम जितनी मर्जी फाउंडेशन लगा लें, हम वो प्योर वाइटिश तो नहीं दिख सकते, और वो बना भी देते हैं धुलनों को तो वो तस्वीर में तो गोरी लगती हैं, तो करीब से वो बढ़ावा लगती हैं, आते हैं ना। यानी हमारा रंग, हमारी नस्ल, शक्ल, फीचर्स, नाक कान, आप तो माशाल्लाह यूरोप में हैं, आप जाकर देखिए जर्मन फीचर्स डिफरेंट हैं, पेरिस के लोगों के फीचर्स फ़र्क है। मैं ट्रेवल करती हूँ, एक एयरपोर्ट से जाके दूसरे में हम उतरते हैं, पहले तो बहुत ही फील करते थे, अब आदत हो गई है। नॉर्वेजियन फीचर्स फ़र्क है, हालांकि सब गोरे हैं। हम अगर लाइक वी कैन से वी आर वीटिश, ना हम गोरे हैं ना काले हैं, तो क्या आपको फील होता है इंडियन मुस्लिम्स का या इंडियन पीपल और पाकिस्तानी का फ़र्क दिखता है? आप अगर अफ्रीका की तरफ निकलें या सोमालीज को देखें, सबके फ़र्क है ना। बस ये समझ लीजिए, कुछ चीज़ें और कुछ कौमें होती हैं, फैमिली का सेटअप होता है, कुछ पीछे डीएनए का भी असर होता है, तो हमारी रंग, नस्ल, शक्ल, सूरत, जहनी सलाहियतें वगैरह एक हद तक गॉड गिफ्टेड है, वी कैन चेंज इट। हम थोड़ा बहुत बदल लें कर लें, लेकिन जो हम खुद कर सकते हैं, जिस पे हम बात करें, मिसाल है कि हम कहें हमारी माँ गोरी क्यों नहीं थी, तब ये तो हमारे हाथ में नहीं है ना। हमारे फलाह ऐसे क्यों नहीं थे, हमारे एंसेस्टर्स जो थे वो ऐसे क्यों नहीं थे। तो जो चीज़ें इंसान खुद कर सकता है ना, जिसमें मेहनत करनी है, उसमें इंसान की इल्मी सतह होती है, वी कैन इंक्रीज आवर नॉलेज। हमारा ऑक्यूपेशन, मर्दों का देख लीजिए वो क्या पेशा अख्तियार करें, ये हमें ज़्यादा फिक्र होनी चाहिए। और अगर मैं आपसे कहूँ कि वी नीड टू इम्प्रूव आवर पर्सनैलिटी, तो वो यही चीज़ें होती हैं। हर बंदे का हक है कि वो खूबसूरत लगे, उसकी पर्सनैलिटी में अट्रैक्शन हो, वो लोगों में बैठे तो लोग उसको लाइक करें, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम शक्ल और सूरत के हिसाब से भी चाहते हैं कि हम अच्छे दिखें। आपको मुझे अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत, ईजी गोइंग रिलैक्स रखना है उसके लिए हमें सोचना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु शुड बी आवर रोल मॉडल? कोई एक तो हो ना हमारा कि जिसको हम आइडियलाइज करें कि हु इज़ द बेस्ट पर्सनैलिटी, तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब आप कहते हैं जी ये तो मजहबी शख्सियत थे, आप फिर रिलीजियस बातें कर रहे हैं, हमारे रिलीजन में और हमारी लाइफ स्टाइल में कोई फ़र्क ही नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रियली, और ये मैं आप नहीं कहते, आप चाहें तो बाद में मैं आपको कई लिंक्स दे देती हूँ, गैर मुस्लिम नॉन मुस्लिम हिस्टोरियंस कहते हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ द नंबर वन। माइकल हार्ट मशहूर किताब है, 100 लोग सक्सेसफुल जो उसकी नज़र में, तो उसमें सबसे टॉप मोस्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो दैट मीन अगर अल्लाह के नबी इतने कामयाब थे तो इसका ये नहीं मतलब कि आप हारों का तस्वीर पढ़ते रहते थे, फिर आपके पास एक मशकीज़ा था, फिर उसमें से पानी पी लेते थे, फिर कुछ सत्तू घोल के पीते थे और फिर बैठ के नमाज़ें पढ़ते। वल्लाह ही ऐसे नहीं थे। ये हमारा एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि आज हम दीन के नाम पे भी जो पर्सनैलिटीज़ आइडियलाइज करते हैं वो इसी किस्म की करते हैं। हंसते नहीं थे, बोलते नहीं थे, अच्छे नहीं लगते थे। हमारे जिनमें अल्लाह के नबी एक बड़े कह लीजिए कि रिलीजस से बेटा ही पाते हैं। सीरत पढ़ते से पहले मुझे भी ऐसे ही लगता था, बैठते होंगे फिर थोड़ी देर बैठ के इस्तग़फ़ार कर लेते होंगे, फिर लाहू अल्लाहू कर लेते होंगे। मैंने जब सीरत पढ़ी और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अब कई बार पढ़ाई, आप दुनिया में आज सोचिए कोई एक बंदा, कोई भी वर्ल्ड लीडर, वैसा UNO का कोई बड़ा हो सकता है, किसी सुपर पावर का बड़ा, आप अपने इस मुल्क की क्वीन या किंग को ले लें, एनी पर्सनैलिटी पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड उनके लिए, कोई गुलकार ले लीजिए, कोई अदाकार ले लीजिए, कोई भी हर फील्ड में होता है ना, कोई क्रिकेटर कुछ, आप इमेजिनेशन में लाइए कोई ऐसी पर्सनैलिटी जिसको लोग पसंद भी करें। आज लाइक्स का बड़ा रिवाज है, सब्सक्राइबिंग का बड़ा रिवाज है, फॉलोअर्स का बड़ा रिवाज है, किसी के एक मिलियन फॉलोअर्स भी हों, आप यूट्यूब चैनल्स देखिए, कुछ चैनल्स पे मिलियंस क्लिक होते हैं, आप उस बंदे की वो बात तक तो वो ठीक है, लेकिन हो सकता है घर में उसकी बीवी उसको पसंद ही ना करती हो, वो बातें बड़ी अच्छी कर रहा है बट उसकी बीवी के लिए वो अच्छा ना हो, मुमकिन है? रियली मुमकिन है? बड़े बड़े कॉमेडियन सारी दुनिया उनके फ़ैन है, वो खुदकुशी क्यों करते हैं? ये गुलकार अदाकार फिल्म एक्टर खुदकुशियाँ क्यों करते हैं? इनकी पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं होती। एक इनको अच्छा कहेगा तो इनके ज़रा नेगेटिव थे पढ़िए जाकर कमेंट्स, तो इनके दुश्मन इनके बारे में बुरा कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लम ऐसे हैं, घर के बीवी, बीवी सबसे बड़ी चीज़ है ना, आपकी बीवियाँ एक से भी ज़्यादा फिर और ही मुश्किल चैलेंजिंग है, एक ही को खुश कर ले बंदा बड़ी बात है, कहाँ इतनी बीवियाँ और वो सारी कहें कि आप जैसा कोई नहीं। दूसरी गवाही होती है घर के मुलाजिम की, मासी से पूछें कि बाजी कैसी है, कहीं रिश्ता करना हो ना तो उसकी मासी का पता लेके घर पहुँच जाए कि इसकी बेटी कैसी है, मासियाँ आपको अंदर का सारा रास दे देती हैं, ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरह से आप देखिए कि अल्लाह के नबी के खादिम थे हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु, 10 साल तक मैं अल्लाह के नबी के साथ रहा हूँ, एक बार भी आपने मुझे डांटा नहीं है, झिड़का नहीं। और आप कहते हैं किस एज में आए थे? 10 साल की उम्र के, आपके 10 साल के बच्चे, आप कहते हैं कि जितने बड़े होते जा रहे हैं उतना खपाते जा रहे हैं, पहले ठीक थे अब ख़राब हो रहे हैं, फिर 10 से लेकर अगले 10 साल तक कितने चेंजेस आते हैं, और इस उम्र में शायद हम सबसे ज़्यादा डांटते हैं बच्चों को, पहले वो बिगड़ चुके होते हैं फिर हमारा सब्र ख़त्म हो चुका होता है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार भी नहीं कहा, और हज़रत अनस कहते हैं कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मेरा वक्त गुजरा है मेरे से कई दफ़ा गलतियाँ होती थी, आप कुछ कहते थे करो तो मैं भूल जाता था, और कभी आपने नहीं कहा होता था तो मैं कुछ कर देता था कुछ, लेकिन आपने मुझे उफ नहीं कहा, तो मुलाजिम की भी गवाही है। उसके बाद माशाल्लाह दोस्त हैं, आप में से किसको पूरा अपने ऊपर एतमाद है कि आपकी 5 दोस्त हैं, कोई क्लोज सर्कल 5 तो होती है ना अमूमन, हमारी दोस्त है इवन आवर फ्रेंड्स जिनके साथ उठना बैठना खाना पीना अकेले में पूछे, और आप सच कह दें कि सच के सिवा कुछ नहीं कहना, देखिए मैं अपनी बेटी इनको देने लगी हूँ ये कैसी है, अकेले में इवन आपकी सगी दोस्त भी आपके बारे में जो जानती होगी इखलास से वो बता देगी। मत सोचिए कि जिनके साथ हम सर वक्त होते हैं वो हमसे बड़े खुश हैं, वो हमें बहुत लाइक करते हैं, बच्चे बस चुप ही कर जाए, मामा की अब क्या ही बात करें, जो सब्र कर जाता है चुप कर जाता है ना, तो दैट मीन कि अल्लाह के नबी सल्लम वाज़ेन गैर मामूली शख्सियत है। और दोस्त दुश्मन मुखालिफ, इवन देखिए कि मक्का में कितनी दुश्मनी थी ना, इवन दे ट्राई टू किल हिम, लेकिन अल्लाह के नबी के अखलाक और किरदार पर एक बात नहीं कर सके। मदीना में देख लीजिए यहूद थे, 3-4 किस्म के दुश्मन थे, किसी ने अल्लाह के नबी को ये नहीं कहा कि आप झूठे हैं सादिक और अमीन, किसी ने आपके बारे में ये नहीं कहा आप धोखा देते हैं, तो दैट मीन कि अल्लाह के नबी सल्लम की पर्सनैलिटी बहुत प्यारी है। इसी तरह बाकी नबी भी, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा तक जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊपर के थे सब बेस्ट थे, बट बाकी अम्बिया कराम के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता। सिर्फ़ अगर पता है तो हमें सबसे ज़्यादा अल्लाह के नबी, और उसके बाद किसको हम जानते हैं? सहाबे कराम, क्योंकि अल्लाह के नबी के ट्रेंड थे। देखिए, टीचर का असर होता है, कोई माने ना माने, जैसे माँ का असर होता ही है। बेटी माँ के घर में है, माँ कहती है तू बिल्कुल मेरे पे नहीं गई, तुम्हारों का बिस्तर भी गई रहती है, मैं तो इतना काम करती तू सोई रहती है। वही लड़की जब शादी होकर ससुराल में जाएगी, आधी से ज़्यादा वो माँ पे जा चुकी होती है। बिलीव मी, हमारे बड़े क्या कहते थे, रिश्ता देखो तो नानी को देखो, माँ को नहीं देखो नानी को देखो, दूध का असर होता है। अब बताइए, तो वो अंदर से चीज़ें जाती हैं ना, तो क्या पता चला कि हम जिन लोगों को जानते हैं उन लोगों में सबसे दी बेस्ट, अल्लाह के नबी ने कहा कि मेरे साथ वाले लोग बेहतर हैं, फिर उसके बाद से होते गए। अब आप कहते हैं कि मुझे अपने आप को डिस्कवर करना है, ठीक है, एक आपकी जाहिर है और एक आपका अंदर है बातिन है। हमारे रवैये भी लोगों से दो तरह के होते हैं। मसलन अगर मैं आपके साथ बोलती हूँ, मैं स्माइली हूँ, ये मेरा जाहरी फेस है, लेकिन अगर मैं अंदर से भी खुश हूँ ना, तो ये वो चीज़ है जो आपको नहीं दिखेगी। बात समझ रहे? मैं शक्ल की, कद काठ की बात नहीं कर रही, क्योंकि वो तो हमारे हाथ में नहीं है। थोड़ी बहुत नोक पलक आप दुरुस्त कर लें, और वो जो लफ्ज़ मेकअप है उसको अगर आप देखें तो मेकअप क्या होता है कि कोई कमी है तो पूरा कर लो। हम ऊपर बढ़ोतरियों को मेकअप कहते हैं, ऐसे ही है ना, जब हम कोई भी चीज़ ओवर चीज़ में आ जाते हैं तो वो एक्स्ट्रा हो जाती है ना। हमने ज़्यादा से ज़्यादा जिस बात को देखना है ना, वो रवैये, रवैया क्या है अपने ऊपर लेकर सोचिए। आप देखिए कि अंदर है हमारे अक्ल, जिस्म में, दिमाग के अंदर है इल्म, इल्म भी आपको पता लग जाता है कौन कब कहाँ गया किधर गया, उसके बस इतना टेस्ट ले लीजिए अगले के इल्म का पता लग जाएगा, कौन कितना सेंसिटिव है आपको पता लग जाता है, उसका ट्रेंड क्या है। ये चीज़ें हम डिस्कवर कर लेते हैं, है अंदर की लेकिन बाहर दिख जाती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बंदे को खुद ज़्यादा पता होती हैं। एक बंदे आप उसको कोई बात करते हैं, गलत होती है आपकी बात, तो वो सुन के कहता है देखे ऐसा नहीं है, लेकिन ठंडा ठंडा सुन लेता है। सेम बात आप किसी और को करें वो भड़क ही उठता है, मुझे कहा क्यों, कि मेरे से हुआ क्या। मैं अक्सर मौके मुंह से सुनती हूँ मेरा ये बच्चा गुस्सा नहीं मानता, इसको अगर कुछ कहना है तो प्यार से कहें। आप लोगों के साथ भी होगा, अच्छा ये है ना, इसको दो लगा भी दूं फिर भी मान जाता है, ये क्या फर्क है। ये वो चीजें हैं जो इंसान को डिस्कवर करनी है, और इससे फायदा क्या होगा कि जिन लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं ना, फिर उनसे झगड़े कम होंगे। और इंशाल्लाह ताला आप जितना ज्यादा इन चीजों पर सोचें समझें, माशरत के साथ हमारे कल्चर में है कोई नहीं है ये इल्म ही नहीं। जितनी पर्सनल ग्रूमिंग की आपको बुक्स मिलेंगी वो या तो इंग्लिश में या इंग्लिश का ट्रांसलेशन है जो उर्दू में है। हमारे कल्चर में इस पे कहते छोड़ो जी कोई और गल करो, इसकी जगह तस्बीहें पकड़ाओ, तो हम ज़रा कोई कह लें कि कोई 10,000 की दफ़ा चलो हम आयत करीमा ना पढ़ लें। हमारे अमूमन जो रिलीजियस महफिलें होती वो ये नहीं होती, दुरूद तंजीना पढ़ लो 313 बार, और जी वो आयत करीमा 1,25,000 पढ़ना है, फिर बहन दोस्तों को बाद में दही बड़े और वगैरह खिला देंगे, है ना। आप कहते हैं हमें आज यहाँ से क्या लेके जाना है, आपको 20 कोड वर्ड्स लेके जाने हैं जिनसे मिलकर आप बने हैं, आपकी पर्सनैलिटी, वो 20 मुख्तलिफ पहलू कि जिनको अगर आप थोड़ी सी नोक पलक दुरुस्त कर लेना तो आज के बाद की ज़िंदगी स्मूथ हो सकती है। कई दफ़ा इंसान को जो बात पता चलती है वो कहता है काश 10 साल पहले पता लग जाती, मुझे फ़ायदा हो जाता। कोई कहता है इतने धक्के खा के जो बात समझ आई है नहीं। और थोड़ा सा इसको अगर लफ्ज़ चेंज करूँ ना, तो जब अपनी शख्सियत और अपने किरदार की तामीर, यानी इसको आप कह सकते हैं कि आई एम जस्ट लाइक ब्यूटीफाई माई पर्सनैलिटी, तो इसकी वजह क्या है, ताकि हमारा तज़किया हो, हमारे अंदर से बुराइयाँ निकले, हमारा करेक्टर बहुत क्लीन एंड क्लियर लोगों को दिखे। और यही काम अम्बिया ने किया था, सूरह जुमा में आता है हुवल्लज़ी बअसफ़िल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम, वो ज़ात जिसने अनपढ़ लोगों में एक रसूल भेजा। अल्लाह के नबी के लोग जो थे इर्द गिर्द वो कौन थे, अनपढ़ थे, कोई किताब नहीं उनके पास आई, वो बिल्कुल एक बदवी तरह के लोग थे। और रसूल का कारनामा देखिए कि यतलु अलैहिम आयातिही, आयते पढ़ते थे, व युज़क्कीहिम, तज़किया करते थे, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, किताब और हिकमत देते थे, सूरह जुमा की आयतें। तो गोया कि अल्लाह के नबी का सबसे बड़ा कारनामा ये था। आप ये ना कहिए कि उन्होंने मक्का फतह कर लिया उनका कारनामा ये था, नहीं, आप देखिए अल्लाह के नबी के अपने दौर में तो कोई बहुत बड़ी फतुहात भी नहीं हुई, आपका कारनामा ये था कि आपने इंसान को बदल दिया। आपके दुश्मन आपके पास आते थे, आपके अच्छे अखलाक के साथ अच्छे किरदार से वो दोस्त बन जाते थे, और सहाबा में जो पोटेंशियल था उनको पता भी नहीं था, लेकिन अल्लाह के नबी की तालीमात ने उसको बढ़ा। आज आपके पास भी बहुत कुछ है, बिलीव में, माजरत के साथ हो, डिसार्ट ना हो, आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन आज तक आपको पता ही नहीं है। जैसे वो तोप है तो आप उससे दुश्मन को मार सकते हैं, और वो तोप से मक्खियाँ और मच्छर मारता रहे, हम अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ऐसे ज़रा सा गो थ्रू कराना चाहती हूँ कि हमारी पर्सनैलिटी में कुछ जो गुड थिंग्स हैं या किस तरह हल्का हल्का कुछ चीज़ों को बोलती जाती हूँ, नंबर आप लिखते जाइए ताकि बाद में हम अपने बारे में ये जान सकें कि क्या वाकई मैंने अपने बारे में ये चीज़ ली। मतलब सबसे पहले लफ्ज़ है ज़हानत, इंटेलिजेंस। हमारे यहाँ ये लफ्ज़ बड़ा मशहूर है, बल्कि वो किसी हमारी साथी की बात है कि जो बच्चा खूबसूरत ना हो और जो लोग देखने आते हैं तो बच्चे पे क्या कमेंट दें, उनको खूबसूरत नहीं लगा। अलग मेरा यकीन है कि हर बच्चा खूबसूरत होता है, उसकी मासूमियत है। तो कहती कि जो बच्चा खूबसूरत ना, फिर लोग उसको देखते हैं तो आके कहते हैं बड़ा ज़हीन लग रहा है, इसकी आंखों में बड़ी ज़हानत है। ये अब इनका एक जोक है, मैं आपको इसलिए सुना रही हूँ कि ऐसा सच है। ज़हानत क्या है क्वेश्चन है आपका, मेरे से मेरा आपसे भी हो सकता है, क्या हम अपना इंटेलिजेंस लेवल बढ़ा सकते हैं या बस ये जो बन गया जो वही है, क्वेश्चन है ना। और ज़हानत कहते हैं ऐसी चीज़ जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से आती है, ये वो चीज़ नहीं है जो आप अपनी तरफ से लें। आप किसी कुछ एक्सरसाइजेस की वजह से कुछ चीज़ों से इसको बढ़ा तो सकते हैं, थोड़ा बहुत इस्तेमाल करते जाएंगे बढ़ती जाएगी, लेकिन आप बिल्कुल एक ग्राउंड लेवल के शख्स को जिसका IQ बिल्कुल ज़ीरो पे है, आप उसको 10 पे नहीं लेके जा सकते। बस जो है उसको इस्तेमाल कीजिए। बस कहते हैं कि ये इनहेरिटेड है, पेरेंट्स की तरफ से आता है, फैमिली में आता है। और बास कहते हैं कि मर्द औरतों से ज़्यादा सहीन होते हैं। कुछ लोग कहते हैं पढ़े लिखे लोग अनपढ़ों से ज़्यादा सहीन होते हैं। कोई कहते नहीं अमीर लोग बड़े सहीन होते हैं, गरीब तो बेकार हैं। वो एक कहावत है ना कि जिन्हां दे घर दाने उन्हां दे कमले भी सियाने। पैसा आ जाता है ना तो वो जो बेकार से बेचारे हरकतें करते हैं लोगों को बड़े अक्लमंद लगते हैं। लेकिन हमारा एक कॉन्सेप्ट है बारह, इसलिए लोग कहते हैं शहरों के लोग बड़े जहीन होते हैं देहात के नहीं होते। इसी तरह बात ज़ातें, आप अपनी हर बंदे की ज़ात से पूछो, कहते हैं दुनिया में सबसे जहीन लोग हमारी ज़ात के ही होते हैं, है ना। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट हैं। फिर बात कहते हैं गोरे लोग बड़े जहीन होते हैं, काले नहीं होते। एक कॉन्सेप्ट मानना पड़ेगा हमें, काले रंग को कभी कोई नहीं पसंद करता। काला बंदा अकलमंद भी हो ना, वो कहते नहीं ऐसी मार रहा है। खूबसूरत बच्चा हो ना, वो बुरी बुरी भी जिद्दें करे, रोए मुंह बनाए, लोग कहते हैं कितना प्यारा लग रहा है। और बेचारा ज़रा सा रंग दबा हो तो कहते चुप करो, तुम क्यों नखरे कर रहे हो। यानी ये हमारे माइंड सेट में। फिर इसी तरह लोग कहते हैं वेस्ट में रहने वाले ईस्टर्न लोगों से बड़े अक्लमंद हैं। आपके यहाँ आने से कम आपको एक तो फ़ायदा हुआ कि पाकिस्तान इंडिया वाले आपको बहुत अक्लमंद समझ रहे हैं। आप अक्लमंद थे तभी तो UK में आ गए, विलायत आ गए, आप विलायत में बैठे हुए, बड़ी बात है। विलायती कपड़ा, विलायती चीज़ें, है ना। यानी ये कॉन्सेप्ट हैं हमारे अंदर कि ऐसे लोग जो होते हैं वो अक्लमंद होते हैं, हालांकि ये सब गलत है। जो असल इंटेलिजेंस है जिसको आप ज़हानत कहते हैं, इसका ताल्लुक ना तो आपकी ज़ात से, आप हर चीज़ में एक्सेप्शनल केसेस देखेंगे, किसी हद तक 19-20 को आप कह सकते हैं। क्योंकि याद रखिए कि साइकोलॉजी में कोई भी चीज़ 100% नहीं है। आप एक रूल बना सकते हैं लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ फ़र्क होता है। ज़हानत क्या है, आपका माइंड सेट क्या है। चलिए हम इस पर बात कर लेते हैं कि आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, आपके लिए ज़हानत क्या है अपने बच्चे के लिए कि वो अच्छा सा पढ़े, अच्छे अच्छे स्कूलों में जाए, फिर वहाँ से फारिग हो, फिर अच्छे नंबर ले, फिर वो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बने। एक दुनियादारी के नाते से हमारा लेवल तो ज़हानत का यही है ना, मेरा बच्चा बहुत सहीन है मैं इसको डॉक्टर बनाऊँगी। माँ का जहन रिलीजियस होगा वो, क्योंकि मेरा बच्चा बहुत सहीन है मैं इसको हाफिज़ बनाऊँगी, है ना। यानी ज़हानत को आप इस तरीके से रखते हैं कि अगर आप दुनिया में कामयाबियाँ ढूंढ रहे हैं तो आप उसको दुनिया में ले जाएंगे। और मिसाल है कि किसी के चार बच्चे हैं, एक वाकई बड़ा ज़हीन है, माँ कहती इसको तो मैं दीन पे लगाऊंगी। हमारे कल्चर में क्या है, देखिए माजरत के साथ कहूँगी, अंधों को बेचारे हैंडीकैप्स को मस्जिद में ले जाओ, इनको छोड़ दो, ये हाफिज़ बना दें, है कि नहीं। जिनको 3 दफ़ा स्कूल वाले निकाल दें उस बच्चे को आप मस्जिद भेज देते हैं कि इसको कुछ करा दें। ये हमारा ड्रॉबैक है, हमारे पास अक्लमंदी का वो मियार ही नहीं। जैसे आप देखें ना, नो मिनु कमाम मनस सुफहा, मदीना के मुनाफिक जब सहाबा कराम को दीन के लिए अपना सब कुछ लगाते देखते थे तो कहते थे ये बेवकूफ़ है, बिलीव मी। यानी एक दुनियादार शख्स के लिए अपनी ज़िंदगी दीन पे लगा देनी, उस वक्त को, अपनी स्किल्स को, अपने हर ब्लेसिंग को अल्लाह के रास्ते में लगा देना, वो कहते बेवकूफ़ी है, नाकाम लोग, बेकार लोग। उनको क्या पता, अल्लाह कहते हैं कि वो तो बहुत बड़े सौदागर थे, वो तो बहुत बड़े सहाबा कराम को ना समझते। अबू बकर सिद्दीक जो एक कॉल पे पूरे घर का सामान ले आते थे, क्या वो ना समझते? ना समझ नहीं थे, उन्होंने तो बहुत बड़े बड़े सौदे किए, ठीक है। तो फिर क्या पता चला कि हमें बैलेंस रखना चाहिए। अगर हमें अपने बच्चों की सलाहियतों से पता चल जाता है कि ये बहुत अक्लमंद है, और यकीन करें आजकल टेस्ट भी हैं, आप करवा सकते हैं कि मेरे किस बच्चे का IQ लेवल कितना है, کبھی اپنے اس بچے کو حفظ میں مت لگائیے جس کی ذہانت کا معیار 4-5 ہے، یعنی ٹوٹل اب میں صرف سمجھانے کے لیے 10 اینڈ آؤٹ آف 10 آپ کے جس بچے کا میموری لیول یا ذہانت یا اس کے اندر سمجھداری 8 سے اوپر اوپر ہے نا، 8, 9 اور 10، آپ اس کو حفظ کرائیے، ورنہ آپ بوجھ ڈالتے ہیں۔ بچے کہتے ہیں ماما کہہ رہی ہیں اس لیے حفظ کرنا ہے، اچھا وہ کرتے بھی ہیں کوشش، ہوتا ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی جیسے میرے اس کمپیوٹر کا ایک خاص اس کا جی بی رینگ ہے، اب میں اس سے اوپر کوئی چیز اس میں ڈاؤن لوڈ کروں گی تو یہ اسٹک ہو جائے گا۔ تو بچوں کے فیصلے کرتے وقت ان کو ڈاکٹر بنانا ہے کہ نہیں، وی شوڈ نو دس۔ اب ہم نے تو جو بننا تھا بن گیا نا، لیکن کم از کم ہم اپنے بچوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو جو ٹیچرس ہیں اور پیرنٹس، ان دونوں کا بہت اہم رول ہے۔ جو بچے یا اسٹوڈنٹس ان کے زیر تربیت ہوتے ہیں، آپ ان کی انٹیلیجنس لیول کو پہلے چیک کریں، پھر آپ ان کو ایکسپلور کریں، اور اس کے بعد پھر اس کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ بس آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ہیں وہ لوگوں میں نہیں خوش رہتے، آپ کچھ لوگ ہیں وہ لوگوں میں ملتے ہی نہیں، اکیلے گھلتے ملتے ہی نہیں۔ آپ کے بچوں میں بھی کوئی ایسا ہوگا، اس کو گھر میں اکیلا رہنا اچھا لگتا ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو دوستوں میں یا فرینڈس کے ساتھ رہنا اچھا لگتا ہے۔ تو اپنے بچے کے بارے میں جو چیز آپ چوز کریں، پہلے چیک کیجئے کہ کیا وہ اس کے لیے بنا بھی ہے کہ نہیں بنا۔ پھر انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، اور اگر اللہ نے آپ کو ذہانت دی ہے تو آپ کو مجھے تو ایک کام ضرور کرنا ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو سمجھنا ہے۔ جو میں ساری باتوں کے اندر سے ایک بہت 2 گھنٹے بھی بولوں یا 15-20 منٹ بھی بولوں، میں ان میں سے ایک جملہ اینڈ پہ ضرور بول کے آتی ہوں۔ آج صبح بھی بولا، پتہ نہیں کہاں بات ہوئی ہے، کہ سسٹرز آپ اپنے بارے میں کیا کہتی ہیں، میں اپنے بارے میں کیا کہتی ہوں۔ مثلاً یہ دنیا آج کی ہے نا، اگر رائٹ وے، اللہ نہ کرے، آج کل تو بہت جگہ آپ سن ہی رہے ہیں اچانک انتقال ہو گیا، کل تک وہ ٹھیک تھیں، 3 دن بعد یہ ہوا، پھر اگلے دن پتہ چلا وہ، یہ باتیں سن رہے ہیں نا ہم سبھی۔ رائٹ وے اگر میں اپنے اوپر لے کر سوچوں کہ میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، میں کہاں کھڑی ہوں؟ کیا میں نے اپنی ذہانت کا یہ ثبوت دیا؟ کیا کہ میں اپنے رب کو فیس کروں؟ مجھے جس مقصد کے ساتھ اس نے پیدا کیا، میں اس مقصد کو سمجھ چکی ہوں، پھر اس کو فلفل کر رہی ہوں؟ آئی ایم اسٹرگلنگ ٹو پلیز اللہ۔ اور قرآن ایک الہامی کتاب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے جو دی ہے، کیا میں اس کو بہترین طریقے سے کر پا رہی ہوں؟ پھر اس کے ساتھ دیکھیے کہ آپ کے میرے کردار کی ایک اور بڑی اہم چیز ہے، وہ قوت برداشت ہے۔ یعنی ہماری سکسیس میں ذہانت بھی اتنی اہم نہیں ہے جتنی آپ کے اندر برداشت کی قوت اہم ہے۔ کئی لوگ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں لیکن قوت برداشت کوئی نہیں۔ آپ کے گھر میں ایسے نہیں بات بات پہ سیکھ پا ہو جاتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں یہ ذہین بڑا ہے لیکن یہ غصے میں بڑی جلدی آتا ہے، ہوتا ہے ایسا؟ تو قوت برداشت بھی ایک اللہ کا دیا ہوا خزانہ ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ جب مائنس، جانتے ہوں گے آپ، جیسے دھاتیں بولتے ہیں اس کو یا معدنیات، جب وہ زمین سے نکلتے ہیں تو وہ کچھ نہیں، ڈائمنڈ کیا ہے؟ کاربن ہوتا ہے، کالے رنگ کا ہوتا ہے۔ ہیرا کیا، آپ نے دیکھے ہیرا اپنی رو شکل میں کیسا ہوتا ہے؟ ایسا ہوگا جیسے یہ باہر پتھر پڑا ہوا ہے۔ جوہری اس کو چھانتا، پھڑکتا ہے، اس کے اندر شائن کرتا ہے، اس کو ڈفرینٹ ایجز سے لے کے آتا ہے۔ بالکل جب ہیرے کو کان میں سے نکالا جاتا ہے تو وہ محض پتھر کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے۔ ایک ماہر جوہری، یعنی جو بھی ہے، کہہ لیجئے سنار، کہہ لیجئے گولڈ اسمتھ، کہہ لیجئے، وہ اس کو تراشتا ہے، خراشتا ہے، اور آپ کو تو اس کے کٹس غلط ہو جائیں تو اس کی قیمت ہی کم ہو جاتی ہے۔ جو جتنا خوبصورت ہے، جس کے ساتھ کٹا، اس کے اندر چمک بہت ہے۔ اور ڈائمنڈ میں ایسا ہوتا ہے کہ صرف ایک بیم آف لائٹ اندر جاتی ہے، وہ اس کے اندر ہی گھومتی رہتی ہے۔ یہ ہے آپ نے ڈائمنڈ ریئل ہے کہ نقلی ہے، اس کا فرق دیکھیں، اندھیرے میں نہیں چمکتا، اس کو صرف ایک رے چاہیے۔ آپ ابھی بلب جلا دیں، سورج کی ہو، وہ ٹیوب لائٹ کی ہو، وہ کینڈل کی، ایک رے اس میں جائے، اس کے اندر ٹک 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 ٹک، اس کے جتنے ایچیز ہیں اس سے ٹکراتی رہے گی تو اندر وہ شائن کرتا۔ یہ ہے ڈائمنڈ، پڑھیے جا کے سائنس، صرف ہے، لائٹ بند کر دیں تو اندھیرا۔ اب آپ میں اپنے اوپر لیجئے، بچوں کی تربیت کتنا اہم کام ہے۔ اللہ نے آپ کو بغیر تراشے ہوئے ہیرے دیے ہوئے، اور آپ ان کو صحیح کر لیں۔ بعض عورتوں کی شادی ہوتی ہے، میاں واقعی ایک ہوتا ہیرا ہے لیکن ابھی اس کو کھڑا نہیں، کمپلیکس کے مارے ہوئے مرد ہوتے ہیں، ان کو پیار ہی نہیں ملا، ان کی فیملی میں اتنے ڈرا بیکس تھے، وہ عقل مند لڑکی ملتی ہے، ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے اس بندے کو بہت بڑا اچھا انسان بنا دیتی ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ آپ نے، میں نے اپنی شخصیت، اپنی پرسنالٹی کو بھی اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کو بھی اچھی شکل دینی ہے۔ ہم کیوں ضائع ہوں؟ آج رات بستر پہ لیٹتے ہوئے ایک دو جملہ ضرور خود سے پوچھنا کہ میری ماں نے مجھے پیٹ میں رکھا، میرے باپ نے اتنے سال کما کے مجھے بڑا کیا، کھلایا پلایا، میرے اوپر اتنا انویسٹ کیا۔ ذرا گنیے تو صحیح کہ آپ کے प्रेप से लेकर या डे केयर से लेकर मास्टर्स करने में कितनी फीसें दी आपके वालिद ने, आपने कितनी किताबें ली, तो क्या इसके बाद में दुनिया से जाने से पहले लोगों को ये सब दे रही हूँ? कोई एक वक्त आपको खाना खिलाता है ना, तो आप क्या कहते हैं, हाउ शुड आई पे यू बैक? होटल में होगा तो वो बिल ला देंगे, आप कहीं मेहमान है वो कहेंगे क्या बात करते हैं, हमारा दिल करता है ना कि हम लोगों को पे बैक करें। अगर कोई इंसान आपकी पर्सनैलिटी खोल कर दिखा दे और आपको बेहतर बना दे, बेहतर से बेहतरीन बना दे, उससे ज़्यादा आपका मुखलिस कोई नहीं है। तो आज से आप इस मौजू पे सोचना शुरू कर दें, गौर व फिक्र कीजिए, मैंने अपनी ये चीज़ कैसे बढ़ानी है, क्या है मस अगर ज़हानत पे थोड़ी मैंने बात की, तो आप चेक कीजिए, दिखाइए जाके डॉक्टर्स को, आप बहुत सारे टेस्ट करवा रहे हैं, ये भी एक टेस्ट करवाइए, और अगर वाकई आपको लगता है कि आपका आईक्यू लेवल 10 है, तो फिर इसको ज़ाया ना कीजिए। आपके पास 50 पाउंड होता है सबसे बड़ा नोट, 50 पाउंड का नोट आपको कोई दे तो आप शायद एक हफ्ते की ग्रोसरी ले आएंगे ना, आप अपने बच्चे को 50 पाउंड दे करके जाओ खर्च करके आओ, तो वो शायद थैला भर के कैंडीज का ले आएगा, लेकिन काम की कोई चीज़ नहीं होगी। आप अपने इस 50 पाउंड से बड़े वजूद को सही जगह इस्तेमाल करें, आपने इसको ज़ाया नहीं करना, और आप जाके चेक करें फिर आप कोई बड़ा काम करें, रियली अल्लाह ने आपको किसी बड़े काम के लिए पैदा किया, और ये जो आपका पोटेंशियल लेवल है ना, ये अचानक निकलता है। आइंस्टाइन ने जब दरख्त से सेब गिरता देखा, उसको लगा अरे ये क्या, ये नीचे क्यों गिरा है, ऊपर क्यों नहीं उलग गया, ये स्टेबल क्यों नहीं, दरख्त से कटा है तो यहीं रहता, ऊपर क्यों नहीं गया, क्योंकि ऊपर कोई चीज़ पुल नहीं है। अच्छा ये नीचे गए, देर इज समथिंग देर, उसने उस पर गौर किया, ग्रेविटी निकाल ली 9.8। अच्छा आप कहते हैं मैं नहीं मानती ग्रेविटी क्या होती है, जाइए छत पे छलांग लगाइए, देखिए आपको कोई चीज़ नीचे करती है कि ऊपर ही रहते हैं, सच बोलते हैं ना, तो आपको अपने आप को बेहतर जगह पे लाना है। हम इस दुनिया में सिर्फ इसलिए नहीं आए कि हम खा पी के चले जाएं, आपको तो वो उस्ताद ढूंढने चाहिए जो आपका टैलेंट खोल कर रख दें, और यकीन कीजिए कुरान से ज़्यादा कोई आपको मुझे डिस्कवर नहीं करता। अब मेरी इंग्लिश ही नहीं अच्छी और मैं जाके वहाँ इंग्लिश में पढ़ाने लग जाऊँ, तो मैं अपना भी मजाक करवाऊंगी, इंग्लिश का भी मजाक और कुरान का भी, तो ये कुरान पोटेंशियल आपका खोलता है। इफ़ यू वॉन्ट टू डिस्कवर योर सेल्फ, और मुझे यकीन है कि आप अभी तक जिस जगह पे हैं, अगर आपने कुरान को इस तरह इन डेप्थ नहीं पढ़ा, इतना इन डेप्थ के जिससे आपका गुजारा हो जाए, तो यकीन कीजिए कि आपने अपने आप को सस्ता बेच दिया। 50 पाउंड की आप जाकर दो चार चीज़ें बेकार सी ले आए हैं, और आप उसी पे बड़े खुश हैं, बच्चा बड़ा खुश है, लेकिन उसको पता चलेगा ये 50 पाउंड की कैंडीज़ ने मेरे 4 दांत ख़त्म कर देने, मेरा शुगर लेवल इतना बढ़ा देना कि फिर मुझे भूख ही नहीं लगनी, और उसके अंदर हाइपरनेस इतनी आ जानी है कि हो सकता है माँ भी मारे उसको कि तुम्हें हो क्या गया। उसने 50 पाउंड अपनी जगह बड़ी अक्लमंदी से यूज़ किए, लेकिन रिस्पॉन्स बता रहा है, रवैया बता रहा है कि ही वॉज नॉट अ वाइज मैन, उसका डिसीजन इंटेलेक्चुअली देखा जाए तो इट्स नॉट अ इंटेलिजेंट पर्सन। हमारे साथ भी यही हो रहा है, हमारा बच्चा ऐसा काम करे जो मैं बता रही हूँ तो हम कहेंगे बेवकूफ़ तरीन बच्चा, तो हम क्या कर रहे हैं। एक जगह मैं बैठी थी, हमारी फैमिली में पकसंग की बात है, तो हम बैठे, अब बच्चे पता है सबसे ज़्यादा अपना आप कब मनवाते हैं माँ से, जब कोई आके बैठा हो, क्योंकि अम्मी जी के ड्राइंग रूम मैनर्स बड़े अच्छे हैं। अच्छा वो उनका बच्चा था, इतना कोई होगा 8 7 8 साल का ही होता है, थोड़ी देर हो तो मामा पैसे, वो बेचारी अब सामने क्या, मम्मी प्लीज़ मम्मी मम्मी मम्मी, 5 रुपये 2 रुपये जो भी मांगता होगा, वो बेचारी चुप करके दे दे, वो चला गया, 5 मिनट नहीं गुजरे फिर आ गया। अब आखिर उसको तो बोलना ही था ना, कहेंगे तुम कर क्या रहे हो इन पैसों का, तो उसने जेब से निकाला तो नकली नोटों की दथियाँ, बाहर बेचने वाला आया होता जो नकली नोट और डमी नोट वो बेच रहा था, ये माँ से असली 5 रुपए का नोट ले जा तो डमी को 500 के ले आए। अब ये माँ के सामने जो बात आई तो कहती कितना बेवकूफ़ है, असली नोटों से नकली खरीद रहा। तो मैंने उनको कहा कि देखा जाए तो हम सब भी तो यही कर रहे हैं, हमें अल्लाह असली देना चाहता है आखिरत का, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। और आपने अपनी सारी स्किल दुनिया में लगा दी, आपको इस दुनिया से ज़्यादा ज़्यादा मिल भी गया, 100% भी मिल गया, तो पीछे कितना को आपके हाथ में रहेगा, यकीनन कुछ गड़बड़ है, आपने पूरी कीमत नहीं दी अपने आप की। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें जितना हम सुनते पढ़ते जाते हैं, उतने ही ज़्यादा अल्लाह की रहमत से हमारा जहन भी खुलता है, हमारा दिमाग भी खुलता है, और आप एक वक्त ऐसा आएगा कि जिसको देख कर कहेंगे कि ऐ मेरे मालिक तू मुझे ज़ाया ना करना। मैं भी अपने बारे में हमेशा यही दुआ करती हूँ, और मैं साथियों से भी यही कहती हूँ कि अपने लिए ये दुआ किया करें कि अल्लाह मुझे ज़ाया ना करना, क्योंकि मैं कुछ कर सकती हूँ और मैं ना करके गई, और आगे जाके पता चला, कभी आपको ज़िंदगी में ऐसा रिग्रेट हुआ होगा, मिसाल है कि मेहमान घर में आ गए और चाय पीनी है, और आप कहते हैं चाय की पत्ती, ओ हो डिब्बा तो खाली है, इधर नहीं उधर नहीं, अब सब बंद है, संडे का दिन है, सोचिए कि सब लॉकडाउन है, मेहमान कहते हैं इट्स ओके कोई बात नहीं ना, इट्स ओके मुझे इतनी तलब नहीं, वो चले गए, अगले दिन आप पेंट्री साफ करने लगी, वहां से एक और चाय का डब्बा निकल आया। अफसोस होता, कितना रिग्रेट है, हाय कल मेहमान ने एक चाय का कप पूछा था, वो भी नहीं मिला। जिंदगी से दुनिया से जाते हुए अक्सर लोगों के साथ यही होता है। ये जो निजा की सख्ती है, मौत की सख्ती है ना, वो सारी ये है कि हमें उस वक्त रिग्रेट हो रहा होता है, मैंने नहीं जाना अभी क्योंकि मैंने अपना काम नहीं पूरा किया। काम पूरा हो जाए ना तो फिर दिल करते मेहमान जल्दी आए, और काम ना किया तो कहते अल्लाह करे रश में फंसे हों। तो ज़िंदगी का सही फैसला करना है, इसमें इंशाल्लाह आगे जाकर हम इन टॉपिक्स में और बहुत कुछ सीखने वाले हैं। फिर आगे इसमें हम ज़हनी पुख्तगी पे बात करेंगे, सब्र शुक्र पे करेंगे, इल्मी सतह पे करेंगे, यानी लॉन्ग स्टोरी, लेकिन मैं इधर ही रोकूंगी। हमारे अंदर इतना कुछ है, यकीन करें, जिस दिन आप अपने अंदर के सारे पोटेंशियल को बाहर आता देखेंगे ना, तो वो दिन आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होगा। आई विश के हमारा पेरेंटिंग स्टाइल और हमारा एजुकेशनल स्टाइल ऐसा ही होता। 7 साल से पहले पहले बच्चे को पूरी तरह बता दिया जाता कि तुम क्या हो क्या नहीं। और जापान में जाइए, चाइना में जाइए, इवन जब अपने लिए प्रोफेशन चूज करने का वक्त होता है ना, तो वो अम्मा की ख्वाहिश पे डॉक्टर नहीं बनते। एक बच्ची थी तो उसको डॉक्टर बन रही थी, तो उसका जरा भी दिल नहीं था उसमें, अच्छी नहीं थी। तो एक दिन उसको बुलाकर ऑफिस में किसी ने, टीचर्स वगैरह ने पूछा कि तुम डॉक्टर क्यों बन रही हो, कहती वो मेरी मरहूम नानी की ख्वाहिश थी। जब मैं पैदा हुई थी ना, तो उन्होंने मेरी अम्मी को कहा था इस बच्ची नू तू डॉक्टर बनाना है। और वो नानी किधर है, वो जन्नत में है, उसकी ज़िंदगी जहन्नम बन चुकी है। हमारे बहुत सारे रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, बिलीव मी। तो 7-8 साल की उम्र में, और स्पेशली हर फील्ड पे, ये पढ़े लिखे लोग यही कुछ करते हैं, वो पूरे सेशंस करते हैं, उनको टेस्टों में लेके चलते हैं कि ये बच्चा किधर है, क्या है। इसी को तो वेस्टर्न स्टाइल ऑफ एजुकेशन कहते हैं। कितने भी अखलाकी बिगाड़ के बावजूद भी आप इनका जो एजुकेशनल लेवल अपने से ऊंचा देखते हैं, तो उसकी ये वजह है, एक एक बंदे के ऊपर काम करते हैं, मेहनत करते हैं। फिर आप देखिए कि किसान भी उस जगह बीज नहीं डालता जहां से निकलना नहीं होता। तो बाद जब हमारी सारी जिंदगी उस चीज पे लगी रहती है, बाद में हमने उसे कोई फायदा नहीं लेना होता। यानी आपने ये सीखा है कि मैंने खुद को टाइम देना है। मैंने आपको ये सिखाया आज, खुद को टाइम दीजिए। हमारे पास कितनों के लिए टाइम है, घर वालों के लिए, दोस्तों के लिए, फैमिलीज के लिए। एक एक शादी को हम 6-6 महीने दे देते हैं। हम कह लीजिए कि अपनी दोस्तों को अपना पूरा दिन दे देते हैं ऐसे उसके साथ बेकार शॉपिंग के लिए निकलने में, लेकिन हम खुद को टाइम नहीं देते। और दिस इज ड्रॉबैक। हम अपनी हेल्थ का कहाँ ख्याल रखते हैं, हम अपनी स्किन का कहाँ ख्याल रखते हैं, हम अपनी हाइजीन का और हम अपनी बहुत सारी चीज़ों का नहीं रखते। तो आज इसी बात पे मैं पूरा करती हूँ। अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला हमारे इस वक्त में बरकत दे बेहतरीन तरीके से। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।